તારીખ 7-8-1995 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 148.
आठ पुष्कर लिखा है, उसका एक पत्र पूरा संकलित किया गया है। उसमें एक पुष्कर का विषय चला था कि ज्ञानी पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है वो दिखती है तो सामान्य मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है वैसे दिखती है, फिर भी वो प्रवृत्ति को वो चाहते नहीं और उस प्रवृत्ति के कारण से उनको बंधन भी होता नहीं। जैसे पानी गर्म है फिर भी उसे आग नहीं लग सकती, आग बुझा सकते हैं लेकिन आग लग सकती नहीं, भले ही पानी गर्म हो कितना भी गर्म हो, अग्नि से अवश्य आग लगती है। दूसरे पोस्ट कार्ड में थोड़ा चला था, फिर से लेंगे। कल्याण में प्रतिबंध रूप जो जो कारण है, कल्याण में प्रतिबंध रूप जीव को बारंबार विचार करना चाहिए, इसका जीव को बारंबार विचार करना चाहिए। किस तरह से हरेक जीव को अपने विषय में विचार करना है कि मेरे आत्मकल्याण में कौन सा प्रतिबंध कारण है। प्रतिबंध कारण मैंने आत्मकल्याण में रुकावट करने वाले कारण, और वे कारण भी कहीं और जगह नहीं है, अपने परिणाम में ही है, अपने व्यक्त परिणाम में है। इसलिए हमारे परिणाम कहाँ रुकते हैं, पूरा पूरा रुकावट कहाँ हमारा हो जाता है, वो बात हम अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर समझना चाहें तो। अगर ध्यान दें हम कि हमारे परिणाम कहाँ कहाँ चलते हैं, कैसे चलते हैं, इस पर ध्यान दें तो हमारी रुकावट कहाँ है वो बात हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे जो प्रतिबंधक कारण है उसका विचार करना तो चाहिए कि हम क्यों अपने आप को नए कर्म बंधन में डाल करके क्यों अधोगति में चले जाएं। और उस कारण को विचार करके मिटाना भी चाहिए। विचार भी मिटाने के हेतु से करना है, विचार विचार करने के हेतु से नहीं करना है, विचार मिटाने के हेतु से करना है। और इस प्रकार के मार्ग को अनुसरण किए बिना, इस प्रकार से मार्ग को, उपाय को, इलाज को इस प्रकार से अनुसरण किए बिना आत्मकल्याण की प्राप्ति हो सकती नहीं है। यहाँ तक चला था। अब सामान्य रूप से सभी जीवों को आत्मकल्याण में बाधक कौन से परिणाम हैं? जैसे आत्मकल्याण के साधक परिणाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, तो आत्मकल्याण में बाधक रूप परिणाम ऐसे ही श्रद्धा ज्ञान के विपरीत परिणाम है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है वो तो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण के शुद्ध परिणाम है, ऐ विपरीत परिणाम है। और जो बाधक है वो उसी गुण के विपरीत परिणाम है और कोई नहीं है। बिल्कुल व्यवस्थित बात ऐसी है, क्योंकि ये तीन मुख्य गुण है। आत्मा में जो अनंत गुण है उसमें ये श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, ये तीन मुख्य गुण है। ये तीन मुख्य गुण अगर सम्यक हुए यानी शुद्ध परिणमन करने लगे तो आत्मा का कल्याण का साधन होकर के मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। और अज्ञान संसार दशा में वही तीन गुण विपरीत रूप परिणमन कर रहे हैं, वही तीन गुण का विपरीत परिणमन का बहुत सरल भाषा में कृपालु देव ने यहाँ जो शब्द गोचर किया है, मौल विक्षेप और अज्ञान तीन लिया है। यह अनादि के जीव के तीन दोष है। मौल मैंने मिथ्या विपरीत श्रद्धान यानी दर्शन वो, मल मैंने दर्शन वो, विक्षेप मैंने आचरण की चारित्र की मलिनता और चंचलता, जैसे राग द्वेष है और चंचलता है, इसको विक्षेप कहते हैं। और अज्ञान मैंने ज्ञान का विपर्यास, अज्ञान मैंने ज्ञान का अभाव नहीं लेना है, ज्ञान का विपर्यास। ये अनादि के जीव के तीन दोष है। एक दर्शन वो है वो श्रद्धान का विपरीत परिणमन है, विक्षेप है वो चारित्र का विपरीत परिणमन है, और अज्ञान है वो चारित्र ज्ञान का विपरीत परिणमन है। अब तीन दोष को कैसे क्रमशः मिटाया जा सकता है इस विषय में संक्षेप में यहाँ बात किया है, क्योंकि लिखते हैं पोस्टकार्ड लिखने का अभिप्राय है, इसलिए लंबी चौड़ी बात तो कोई इधर नहीं लिखी है। तो अज्ञान कैसे मिटता है, सबसे पहले अज्ञान का बात किया, क्योंकि ज्ञान ही साधन है। ज्ञानी पुरुषों के वचन की प्राप्ति होने पर उस पर उसका यथा योग्य विचार होने से अज्ञान की निवृत्ति होती है। निमित्त और उपादान दोनों बात बता दिया है, एक वाक्य में एक वचन में दोनों बात बता दिया है कि अज्ञान की निवृत्ति माने नाश कैसे होता है, निवृत्ति माने नाश होना। तो अज्ञान का नाश कैसे होता है कि जिसके पास ज्ञान है ऐसा ज्ञानी पुरुष, जिसको अज्ञान मिट गया है और सम्यक ज्ञान जिसको बरतता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के वचन वो निमित्त है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष के वचन हमेशा हमेशा आत्मकल्याण में निमित्त होता है, पर आत्मकल्याण के उद्देश्य ही इनकी वचन की प्रवृत्ति होती है। अथवा ज्ञानी पुरुष के वचन का विषय क्या है, आत्मकल्याण, तो ऐसे वचनों की प्राप्ति होने पर और इसका यथा योग्य विचार होने पर कि आत्मकल्याण के वचन है वो मेरे आत्मा को कैसे लागू होता है, वो उपादान का बात आया। इस आत्मकल्याण के हेतुभूत वचन पर आत्मकल्याण के दृष्टिकोण से विचार करना, ये उपादान की बात आया, अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान का नाश हो जाएगा। बहुत संक्षेप में लिया है, फलाना शास्त्र पढ़ो वो बात नहीं लिया है। कोई भी ज्ञानी पुरुष के वचन है उनको आत्म कल्याण की दृष्टि से विचार करना है, कोई लौकिक दृष्टि से विचार करना नहीं है, और कोई अन्यथा मैंने अपने आत्म कल्याण को छोड़ करके दूसरे दृष्टिकोण को प्रयोग करके भी विचार नहीं करना है। अगर ऐसा किया जाए तो नियम से अज्ञान का नाश हो जाएगा। बहुत सुगम रूप से अज्ञान का नाश करने का ये विधि बताया है। अज्ञान मैंने विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान मैंने क्या कि जो जहां अपना अस्तित्व नहीं है ऐसे अन्य द्रव्य भाव में अपनापन को जानना, ये शरीर मेरा है, यहां से लेकर के नजदीक में नजदीक वो चीज है, ये शरीर मेरा है, इसकी तंदुरुस्ती मेरी तंदुरुस्ती है, इसका रोग वो मेरा रोग है, अगर उसका वजन बढ़ा तो मेरा वजन बढ़ा, वजन कम हुआ तो मेरा वजन कम हो गया, ये सुंदर तो मैं सुंदर, वो सुंदर नहीं तो मैं सुंदर नहीं, सब ज्ञान है। फिर रहा परिवार, ये मेरे परिवार के जन है, तो मेरा मकान है, मेरी संपत्ति है, ये जानकारी बिल्कुल विपरीत है। ऐसा जो जीव जानता है वो इसलिए विपरीत है, वो आत्मा से तद्दन भिन्न है और उसमें आत्मा का कोई अस्तित्व का एक अंश भी नहीं है। जहां हम है ही नहीं वहां अपनापन करना फिर ज्ञान का विपरीत पना है, और जहां ज्ञान का विपरीत पना होता है वहां श्रद्धान का विपरीत पना और अचारिद्र का विपरीत पना होता ही है। ज्ञान अपने में एकत्व करे और पर जो जानने में आता है उससे भिन्न बना करे, भिन्न बना जाने, अपने आप को अभिन्न रूप से अनुभव करे और पर को पर रूप जाने, वो ज्ञान का ज्ञानत्व रूप परिणमन है। दोनों भूल निकालनी चाहिए, जानकारी वाली और अनुभव वाली दोनों भूल निकालनी चाहिए। तो ये परिणमन नहीं भूमिका लेगा, परिणमन तो सही होना ही चाहिए, समझ तो सही होती है, फिर परिणमन नहीं सुधरता तो क्या करें, कोई फायदा तो नहीं है उस समझ से, कोई फायदा नहीं तो आत्मा को तो कोई शांति नहीं मिलेगी जानकारी करने से, परिणमन होगा तो शांति मिलेगी, वही फायदा है वही लाभ है। समझ तो पहले होती है, समझ तो होती है, लेकिन समझ होती है वो स्वलक्ष्य होती है तो परिणमन आता है, पर लक्ष्य होती है तो परिणमन नहीं आता है। इसलिए स्वाध्याय का मूल सिद्धांत यही है, स्वाध्याय में मूल सिद्धांत यही है कि स्वलक्ष्य स्वाध्याय करना पर लक्षित स्वाध्याय कभी नहीं करना। दूसरा क्या जानता है, क्या समझता है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको तो हमारा इस्तेमाल करना है, इस तरह से जाना लेना। दूसरे पर ध्यान जाता है, लक्ष्य जाता है, तो इसका नुकसान बड़ा है। इतना बड़ा है कि हमारा स्वलक्ष्यपना है वो आएगा ही नहीं, और अनेक प्रकार का दुर्गुण उत्पन्न होगा। और जहां सुधरने का मौका है वहीं बिगड़ने का प्रकार बन जाएगा, फिर सुधरने का कोई अवसर नहीं है। जो जगह पे हमें हमारा सुधार कर सकते हैं उसी जगह पे अगर हम हमारा बिगाड़ करते हैं, फिर सुधरेंगे किस जगह पे जा करके? और तो कोई अवकाश नहीं रहा। इसलिए जब ज्ञान ऐसा है कि स्वयं में एकत्व करे और पर से भिन्नत्व करे, और यही ज्ञान का ज्ञानत्व है, और इस पर में एकत्व करे और स्व में तो कुछ करे ही नहीं या चुक जाए इसको, तो यही ज्ञान का अज्ञानत्व है। जब ज्ञान का अज्ञानत्व ऐसा है और ज्ञान का ज्ञानत्व ऐसा है, तो ज्ञानी अज्ञानी का भेद भी उसी तरह से समझा जा सकता है। इस तरह से ज्ञानी का ज्ञानी को पहचान सकते हैं कि ज्ञानी का ज्ञानत्व क्या है। उसे 1689 में ऐसा लिया है। में नीचे से ऊपर का पैराग्राफ एक छोड़ करके, अज्ञान और ज्ञान का भेद मैंने तफावत अंतर जिसको समझ में आया है उसे अज्ञानी और ज्ञानी का तफावत भी सहज समझ में आने योग्य है। तो ज्ञान और अज्ञान का अंतर क्या है कि अज्ञान पर में एकत्व करता है, आधार बुद्धि करता है, और सुख बुद्धि भी उसमें उत्पन्न होती है अज्ञान में। हाँ, एक ही गुण के दो प्रकार का परिणाम है, एक विपरीत है और एक अविपरीत है। ज्ञान गुण का ही परिणाम है, एक विपरीत परिणाम है उसको अज्ञान कहते हैं, एक अविपरीत परिणाम है उसको ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे ज्ञान और अज्ञान का अंतर जिसको समझ में आता है उसको अज्ञानी और ज्ञानी दोनों का अंतर भी समझ में आता है, उसको वो बात उसके परिणमन से और उसके वचन से मालूम पड़ जाती है। ऐसा यहाँ विषय चला है। हाँ, तो ज्ञानी पुरुष का संग किया तो सार्थक है। ज्ञानी पुरुष का संग मिलने पर भी अगर हम परलक्षीपना नहीं छोड़ते हैं, जो अनाधिका है, बहुत आदत भी हो रखी है, तो उसको उसे हमको जैसे कैसे भी मिटानी है। इसका नुकसान समझे तो सहज मात्र में वो छूट सकती है। अगर इसका नुकसान नहीं समझ में आते तो उसकी वो दोष को बहुत हल्का दोष समझ करके निकाल देते हैं, जबकि बहुत बड़ा भारी दोष है। शास्त्र ज्ञान करें, शास्त्र पढ़ें परलक्षी भाव से और दुर्गुण की उत्पत्ति हो जाए। मैंने परलक्षी ज्ञान से कितना भी वो ज्ञान शास्त्र के अनुकूल बराबर सूक्ष्म हो तो भी वो श्रद्धान को पलटाना में समर्थ नहीं है, निमित्त नहीं है। क्या है कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि अगर सही रूप में उसका प्रयोग किया जाए, यानी स्वलक्ष्यपने से, तो वो खुद तो सम्यक होगा ही, लेकिन श्रद्धान को भी वो सम्यक कर देगा। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान सम्यक होता है। जैसे राग में सही श्रद्धान करने का कोई निमित्तत्व नहीं है, चाहे जितना भी शुभ राग करो, आप कितने भी ऊंचे दर्जे का शुभ राग करो, लेकिन वो राग में विकल्प में श्रद्धान को उल्टा श्रद्धान को सम्यक करने का कोई निमित्तत्व नहीं है। इसलिए मंद कसाई से लाभ होता है वो बात नहीं रहती है मुमुक्षु को, मंद कसाई वो शुभ राग रूप है। ठीक उसी तरह परलक्षी ज्ञान में भी श्रद्धान को विपरीतता मटा करके सम्यक श्रद्धान करना, सुल्टी करना, उल्टी श्रद्धान को सुल्टी करना, ऐसा निमित्तत्व नहीं है। चाहे कितना भी अंग पूर्वक स्वाध्याय कर लो, कंठस्थ कर लो, अंग पूर्व को भी कंठस्थ कर लो, परलक्ष्य ज्ञान से आत्मसर्दान नहीं होगा। ठीक उसी तरह किसी भी प्रकार के शुभ राग में, शुभ विकल्प में पुरुषार्थ जगाने की ताकत नहीं है, तो आत्मवीर्य को आत्मसन्मुख नहीं कर सकता, स्वसन्मुख नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह परलक्षी ज्ञान में भी पुरुषार्थ जगाने की ताकत नहीं है। कितना भी ज्ञान कर लो ना, पुरुषार्थ नहीं उठेगा। पुरुषार्थ तो नहीं उठेगा, लेकिन वही ज्ञान में एक उलझन होगी, आकुलता होगी, अकुलाहट होगी कि अरे मैं इतना जानता हूं, समझता हूं, फिर भी मेरा पुरुषार्थ क्यों नहीं उठता है, ये प्रश्न आकर खड़ा हो जाएगा। यही कारण है इसका कि परलक्षी ज्ञान है। अगर यही ज्ञान स्वलक्षी हो, वही ज्ञान विषय बदलने की जरूरत नहीं, तो पुरुषार्थ की उत्पत्ति हो जाएगी और श्रद्धान भी समय हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे विकल्प है, शुभ राग है, वो आत्मशांति को नहीं ला सकता, वैसे परलक्ष्य ज्ञान भी आत्मशांति को पैदा कर सकता नहीं है। ये सब बात हमने लिया है तत्वानुशीलन में, वो बात लिया है तत्वानुशीलन में, जो सुविधि का प्रकरण है उसमें वो बात लिया है। स्वलक्ष्य ज्ञान और परलक्ष्य ज्ञान में क्या क्या सद्गुण और अवगुण का प्रकार बनता है, श्रद्धान में, आचरण में और पुरुषार्थ में, शांति में, वो बात लिया है।
आप कोई भी शुरुआत की बात में कोई भी स्वाध्याय करता हो करते हो किसी भी ज्ञानी के वचन से स्वाध्याय करता हो कोई भी तत्व ज्ञान का विषय हमारे सामने हो हमारा अनादि से परलक्षीपना है तो हम उसमें दिमाग लगाते हैं उपयोग लगाते हैं और बात को समझ लेते हैं तो हमको परलक्षीपने से कोई फायदा नहीं होता है और वही विषय को उसी विषय को हम स्वलक्ष्य मैंने आत्म कल्याण के लक्ष्य से हमारा अप्रोच हुआ है उस पर मेरा आत्म कल्याण कैसे इसमें से निकल होता है तो वही विषय अपने को आत्म कल्याणकारी बनता है तो शुरुआत से ही हम स्वलक्षीपने से स्वाध्याय करने की पद्धति क्यों नहीं रखे इसमें हमें कौन से आपत्ति है ये बताओ जब स्वाध्याय हम हमारे लिए करते हैं तो उसमें स्वलक्षीपना रखने में कौन सी तकलीफ है शुरुआत से ऐसा कभी अभिप्राय मत रखिए कि शुरू में तो परलक्षीपना होता है बाद में स्वलक्षीपना हो जाएगा ये गलत अभिप्राय है शुरू से ही हम स्वलक्षीपने से ज्ञानियों के वचनों का या शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकते हैं हमारी इतनी सूझ होनी जरूरी है पर वो कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए बड़ी बात नहीं है कि फिर हमारा हेतु क्या है अगर हम हमारे जात को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं फिर हमारा कौन सा हेतु है स्वाध्याय करने के पीछे टटोल लेना अपने आप को पता चल जाएगा हाँ ऐसी ध्येय शून्य प्रवृत्ति हुई है और ध्येय शून्य प्रवृत्ति से मैंने संसार का ध्येय तो अनादि से रहा है तो संसार फलेगा उस प्रवृत्ति से क्या फलेगा संसार पनपेगा संसार का ध्येय तो अनादि से है जीव तो उससे संसार बढ़ेगा चाहे धर्म प्रवृत्ति कुछ भी करो अगर मोक्ष का ध्येय हुआ तो उसी प्रवृत्ति से मोक्ष के प्रति गमन होगा परिणामों का अब यहां पर सुपालु देव ने ये कहा कि पहले अज्ञान मिटाना अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञानी पुरुषों का वचनों का स्वाध्याय करना विचार करना यथा योग्य विचार करना मैंने स्वलक्षिपने विचार करना इसको यथा योग्य कहते हैं और इससे अज्ञान की निवृत्ति होगी अज्ञान का नाश होगा ही
और तो सही हुआ वो यथा योग्य नहीं
हाँ अर्थ सही होने पर भी अर्थ अनेक प्रकार के होते हैं एक शब्दार्थ होता है फिर इसका भावार्थ होता है फिर किस नए का वचन है उसको नयार्थ कहते हैं और मत सापेक्ष जैन मत में ऐसा है बौद्ध मत में ऐसा है वेदांत में ऐसा है उसको मतार्थ कहते हैं ये सभी प्रकार का अर्थ सही होने पर भी हाँ शब्दार्थ भावार्थ नयार्थ मतार्थ ये चारों बराबर होने पर भी यथार्थता नहीं भी हो सकती है। उसका परमार्थ बराबर होना चाहिए और इसका जो परमार्थ है वही रहस्यार्थ है, वही इसका रहस्य है, ये ठीक होना चाहिए। बाकी यहाँ पहुंच तो सब बुद्धिमानों की होती ही है, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो तो शब्दार्थ भी जानते हैं भावार्थ भी जानते हैं और नयार्थ भी जानते हैं, नए ज्ञान होने से नए चक्र का अभ्यास किया हो तो इससे कोई ज्ञान सम्यक नहीं होता है। लेकिन इसका परमार्थ इसका रहस्यार्थ इसका मर्म यथायोग्यपणे जानने से अज्ञान की निवृत्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की परंपरा बलवान होने से अज्ञान भी तगड़ा है ऐसा कहते हैं, पर मैं अपनत्व आसानी से छूट वह ज्ञान की परंपरा बलवान होने से अज्ञान भी तगड़ा है ऐसा कहते हैं, पर मैं अपनत्व आसानी से छूटता नहीं, हो ही जाता है और बाद में पता चलता है कि हुआ, किसी को तो पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ अपने स्व कर रहे हैं। देखो एक छोटा सा दृष्टांत ले ले प्रैक्टिकली, एक 2-5 साल का बच्चा है वो अपने माँ बाप के सिवा रह नहीं सकता है? हम भी थे, हम भी 2-5 साल के थे, आज हमारा बच्चा जो करता है वही हमने किया है कि दूसरा कुछ किया है? तो उसने क्या किया कि अपने माँ और बाप में अपनत्व किया, और वो माँ बाप से प्यार भी करता है, माँ बाप भी उससे प्यार करता है। ये अपनत्व रख करके अपने संतानों में प्यार करना प्रेम करना वो जहर खाने बराबर है। क्या खाते हैं हम? जहर खाते हैं। अब हम बड़े हो गए, जहर खाते 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 टॉक्सिकेशन उतना हो गया है कि अब अपने को छोड़ना चाहे तो पसीना आता है, छूटता नहीं है। क्यों? कि हमारा बचपन से इतनी उम्र तक उतना उल्टा प्रैक्टिस हुआ है कि इस उल्टा प्रैक्टिस को सुल्टी प्रैक्टिस में ले जाना बड़ी तकलीफ वाली बात होती है, बहुत कठिनाई आती होती है और हम कर नहीं पाते, ये गड़बड़ होती है। ये अभ्यास करने जैसी चीज है। आज भले हम बच्चे नहीं है बड़े हैं, लेकिन हमारे बच्चे को देखें तो उसको क्या होता है, संस्कार तो अनादि का दोष लेकर के आया है, 3 दोष अनादि का है तो दोष तो लेकर के आया है, पर प्रैक्टिस बढ़ाता है, प्रैक्टिकली दृढ़ करता है अपना। इनको कोई भी अच्छा खाना दो नहीं खाएगा, अच्छा खिलौना दो खिलौना दो नहीं खुले खेलेगा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाप पापा चाहिए, मम्मी चाहिए और पापा चाहिए। ये जो गड़बड़ है वो चालू रहती है, इतनी चालू रहती है फिर उसको मिटाने की बहुत कठिनाई हो जाती है, बहुत दृढ़ संस्कार हो जाता है इसका। आपके दुकान में ऑफिस में अकाउंट की जो पद्धति है वो तो कोई आकर के हम कहे इसको बदलो ऐसा करो, हमको नहीं है, हमको ये अनुकूल पड़ता है, ट्राई कर दो। जिस पद्धति से हम अकाउंट रखते हैं ना उसी पद्धति से रखेंगे। एक प्रैक्टिस हो जाती है, हमने बहुत से प्रयोग किया है। हमारे अलग अलग ऑफिस में हम अकाउंट पद्धति अलग अलग रखते थे। कमीशन एजेंट की जो फर्म थी उसमें बड़े बड़े चौपड़े लंबे लंबे रखते थे, बॉम्बे में जैसे होते हैं ऊपर माथा बांध करके, हाँ इतने इतने बड़े बड़े। जबकि हमारे फर्टिलाइजर्स के ऑफिस में हम बैंक सिस्टम रखते थे, एक एंट्री को पोस्ट किया बैलेंस निकालो, तो सब बैंक जैसे ही लेजर रखते थे, पोस्टिंग किया बैलेंस निकालो, पोस्टिंग किया बैलेंस निकालो, एक एक एंट्री का बैंक अकाउंट सिस्टम रखते थे। हमको माथा में वो नहीं था ऐसा ही करना, फ्री माइंड रहते थे। किसी भी प्रकार का बिजनेस करो, किसी भी प्रकार के सिस्टम रखो, ओपन माइंडेड कर सकते थे। बाकी तो व्यापारी के दिमाग में आएगा नहीं, मतलब क्या है कि जिस आदत हमको बन गई है, पर हम जिस एरिया में रहते हैं हम उस एरिया में घर बदलना नहीं चाहते हैं। ट्राई कर लेना, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है, मुश्किल होता है। ये तो अनादि का दोष है, इस जन्म का तो अब दृष्टांत लिया है, लेकिन ये दोष को तीनों प्रकार के अनादि के हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिट सकता है, कितना भी बलवान हो। इधर क्या लिखा है, अज्ञान की संतति बलवान होने से, इस पर बात चली, भले कितनी बलवान हो लेकिन अपना आत्म स्वभाव इससे भी बलवान है। ज्ञानी पुरुष दोनों बात करेंगे कि अज्ञान की संतति बलवान भी है, और अज्ञान को नाश करना वो तो अनादि का अंधकार को एक दिया जला करके नाश करने के बराबर है। नाश एक ज्ञान प्रकाश, घोर अंधेरा हो और बहुत काल का अंधेरा हो, कोई भी कमरे में शुरू से ही बंद कमरे में अंधेरा रहता हो, कमरा बना तब से और गाढ़ अंधकार हो, लेकिन एक दिया सलाई जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, प्रकाश हो गया। ऐसे ज्ञानी पुरुष दोनों बात एक ही हेतु से करते हैं, अविरोध रूप से करते हैं, विरोध रूप से नहीं करते हैं। इसलिए कहीं से भी लो, हेतु एक ही है, उसके पीछे आत्मकल्याण के अलावा कोई हेतु नहीं है। इसलिए अगर हम स्वाध्याय आत्मकल्याण के हेतु से कर रहे हैं तो हमको कोई बात कोई वचन परस्पर विरुद्ध नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों में वही आशय है। अगर हमारा आत्मकल्याण का दृष्टिकोण नहीं होगा तो हमको बात में विरोध सुना लगेगा। एक जगह तो कहते हैं कि अज्ञान बलवान है, दूसरी जगह बोलते कि नहीं ऐसे ही निकल जाता है, सहज मात्र है। क्या शब्द कहेंगे, सहज मात्र। यौ ज्ञान की संतति बलवान होने से इसका रोध होने के लिए, यानी उसको बंद करने के लिए, और ज्ञानी पुरुष का वचन का यथायोग्य विचार होने के लिए मल और विक्षेप को भी मिटाना चाहिए। मतलब क्या है, जब हमको अज्ञान मिटाना है तो साइमल्टेनियसली उसी वक्त हमको श्रद्धान में और आचरण में भी हमारा फर्क होना ही चाहिए। तो कैसे कि मुमुक्षु की भूमिका में हम अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञानी पुरुष के वचन के स्वाध्याय कर रहे हैं। गोपाल देव के वचन हमारे सामने, पर वही वचन ऐसा कहते हैं कि अगर तुमको हमारे वचन का स्वाध्याय करके अज्ञान मिटाना हो तो तुमको मल को भी मिटाना चाहिए और विक्षोप को भी मिटाना जरूरी है। मतलब श्रद्धाग्नि में कोई फर्क होना चाहिए, यानी दर्शन मोह का अनुभाग टूटना चाहिए और चारित्र मोह में भी रस भंग होना चाहिए। जब दर्शन मोह मंद होता है, चारित्र मोह का रस टूटता है और ज्ञान सत्पुरुष के ज्ञानी पुरुष के वचन को स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करता है तो उसी को हम एक शब्द में कहते हैं सुपात्रता। तीनों का परिणाम एक सुपात्रता में समाविष्ट है। ऐसी सुपात्रता है वही आगे बढ़कर के मोक्ष मार्ग में प्रवेश करेगी। अगर इस प्रकार की सुपात्रता नहीं है तो मोक्ष मार्ग भी आने का संभव नहीं है। इसमें क्या है, अपन मोक्ष भूमिका का विचार करें कि हम सत्पुरुष के वचनामृत को आत्मलक्षी स्वाध्याय कर रहे हैं तो साथ साथ हमारा दर्शन मोह भी मंद होगा सहज रूप से। इसलिए वो बात का कृपालु देव ने ध्यान खींचा है कि ये होता है कि नहीं होता है। तुम देखो कि कर्ता बुद्धि तीव्र रही कि मंद रही, सुख बुद्धि तीव्र हुई कि मंद हुई, तो प्रधान में फर्क हो गया, मैंने मिथ्यात मंद हुआ और उदासीनता आने से चारित्र मोह का भी रसभंग हो गया। तो ऐसे मुमुक्षु की भूमिका में भी दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम एक साथ सुधरने लगता है। ऐसा नहीं है कि पहले ज्ञान से ज्ञान करो फिर मिथ्या श्रद्धान से सम्यक श्रद्धान करो, साथ साथ ही सब काम होता है क्योंकि परिणमन साथ साथ है, इसलिए काम भी साथ साथ होता है और होना चाहिए भी। क्या कहा, यह ज्ञान की संतति बलवान होने से और इसका रोध प्रतिरोध उसको बंद करने के लिए और ज्ञानी पुरुष के वचन का यथायोग्य विचार होने के लिए मल और विक्षेप को भी मिटाना चाहिए, इसमें भी फर्क होना चाहिए, साथ साथ उसमें भी फेरफार हो जाना चाहिए। तो किस लिए कहा कि कोई शास्त्र पढ़ता है तो ज्ञान वृद्धि करते रहता है, शास्त्र पढ़ करके ज्ञान को बढ़ाता रहता है और श्रद्धांग में कोई फर्क नहीं, और जो चालू जीवन है उसमें खाने में पीने में इतना रस लेता है कोई फर्क नहीं कर पाता है उसका, तो प्रवृत्ति यथार्थ नहीं है। वो ज्ञान मार्ग की प्रवृत्ति है फिर भी यथार्थ नहीं। ऐसा कोई व्रत नियम लेता है, चारित्र मोहमंद होता है और श्रद्धा ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रवृत्ति बराबर नहीं है। इसलिए कहा कि काम तो एक साथ तीनों मुख्य गुण में एक साथ साथ काम होना चाहिए।
परिणाम होते हैं, इनमें बड़ा बड़ा कोई परिणाम होता है।
हाँ, तभी कई सुपात्रताएं हैं और वही परिणमन यथार्थ है मुमुक्षु की भूमिका का, वरना यथार्थ नहीं है। अब मिथ्यात्म मिटाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सरलपना, क्षमा, अपने दोष को देखना, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, ये वादी मल मिटने का साधन है। एक पुष्कर में कितनी बात भरी है, पहले सरल बना लिया है। मुमुक्षु की भूमिका में अगर आप अपने दर्शन मोह को या परिणाम की मलिनता को मिटाना चाहते हो तो पहले सरलपना में आ जाओ। सरलता होना बहुत जरूरी है। सरलता में क्या होता है? लेट गो करना। क्या? एक आत्मकल्याण के लक्ष्य से बाह्य परिस्थिति में कहीं भी हट, कहीं भी पकड़, कहीं भी असरलता, कहीं भी जिद, कहीं भी वक्रता, इस प्रकार के परिणाम नहीं होने चाहिए। इसलिए सरलता पर तो एक अपना आर्टिकल आया है। महत्वपूर्ण बात है, दर्शन मोह को मिटाने के लिए या परिणाम की मलिनता मिटाने के लिए ये सरलपना है, ये सबसे अच्छा साधन है। हाँ, क्रम छोड़ के चलना वो असरलता है, क्रम में चलना वो सरलता है। बहुत सी बातें हैं उसमें। प्रश्न थे सरलता करके देखो। अब थियोरेटिकल नहीं लेना है, प्रैक्टिकल लेना है। जैसे कोई हमारे से आड़ा चलता है, संसार में वो रिवाज है, गुजराती में आपने कहे बच्चे आड़ा लाकड़े आडो वेर, लाकड़ू आडो है तो एनो वेर पण एटले कापणी पण आडी थाय, सीधी न कपाई फाटी जाय, सीधू कपा जाओ तो फाटी जाए। आडू लाकड़ू हो तो एने वेर आडो कर नाखो पड़े, वेर का काटना करो छे। हाँ, तो उसको आडा ही काटना पड़े। ऐसे हमारे से कोई टेढ़ा चलता है तो हम टेढ़े चलते हैं, कोई हमारे से टेढ़ा चलता है तो हम क्या करते हैं? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, तो भले ही टेढ़ा चले, तुम सीधा चलो ना, तुमको क्या आपत्ति है? वो दृष्टांत है इसका। ठीक, अब कोई आड़ा चले इसके साथ आड़ा मत चलना। हाँ, फिर भी चलोगे तो कान पकड़ना पकड़ेंगे, ऐसा क्यों किया? अपन सरलता रखनी है। और जो क्षमा, जो सरलता रखता है वही क्षमा दे सकता है। कोई भी जीव हमारे प्रति वैर विरोध करे, वैमनस्य रखे, कुछ भी करे, हम उसको क्षमा कब दे सकते हैं? अगर सरलता हो तो, हमारे में सरलता नहीं हो तो खिंचाता नहीं हुए बिना रहेगी नहीं।
बाहर से दिखाव करेंगे क्षमा करने, बाहर से दिखाव होगा क्षमा करने का, अंदर में चलते रहेगा।
तो सरलता ना कहा रहा, वो तो मायाचार हुआ और सरलता हुई। मायाचार है वो भी ऐसा रहता है, उसको छोड़ देना। माया की जो प्रकृति ने प्रकृति है तो मिथ्यात्व के साथ सीधा संबंध है इसका। क्रोध मान माया लोभ चार में माया की जो प्रकृति है, बाकी के तीन चारित्र मोह में जाता है। लोभ क्रोध मान तीनों चारित्र मोह माया दर्शन मोह में जाते हैं। इसलिए इसके विरुद्ध सरलपना है। माया के विरुद्ध क्या है? सरलपना। इसलिए वो मल मिटने का कारण है। जिसको दर्शन मोह तगड़ा है वो तो कितना भी ज्ञान का क्षोभ संभाला हो उसमें ज्ञान में मलिनता है, और वो मलिनता के कारण वो स्वयं का दर्शन नहीं कर पाएगा। नित परमात्मा का दर्शन करने में वो मलिनता आड़े आएगी। हमारा ज्ञान में हमारा परमात्मा स्वरूप का दर्शन क्यों नहीं होता है? अगर ज्ञान दर्पण स्वच्छ होता तो नित परमात्मा का दर्शन तो होना स्वाभाविक है, लेकिन ज्ञान दर्पण मलिन है तो परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। अंदर में भीतर में वो भी होते हुए भी वो मलिनता दर्शन के कारण से आई ज्ञान में, उसको मिटानी है। तो सरलपना से मिटेगी, क्षमा के परिणाम से भी मिटेगी। तीसरा अपना दोष देखना, वो भी सरलता के बिना हो सकेगा नहीं, वरना तो अपना दोष नहीं, मेरा दोष नहीं है, इनका है, सामने वाले का है। हमको गुस्सा है लेकिन क्यों, आपने ऐसा बोला तब तो, आपने ऐसा कहा तब तो, वो बात आ जाएगी। एक और बड़े हमारा दोष हमारे कारण से है, दूसरे किसी भी के भी कारण से नहीं है। वो सैद्धांतिक है और उसका स्वीकार होना चाहिए। और चलते हुए परिणामों में अपना दोष को देखना, यही दर्शन मोह को मंद करने का सबसे बड़ा प्रयोग है। ये प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल फायदा है इसका, दोष मिटाने का। और जिसको मिथ्या प्रदान मिटाना है उसको अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के परिणाम आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो अपनत्व होता है, रस चढ़ता है। अगर आरंभ परिग्रह बढ़ने से इसमें रस चढ़ता है तो उसको मिटाने के लिए जरूरी है कोई विकल्प आएगा कि अपने को अपनत्व ही नहीं रखना है तो फिर बढ़ाने से क्या फायदा। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का जो अभिप्राय हुआ वो भी दर्शन मोह को मंद करेगा। ये मल मिटने का साधन है। और ज्ञानी पुरुष की अत्यंत भक्ति वह विक्षेप मिटने का साधन है। परिणाम में जो डिस्टर्बेंस होता है उसको विक्षेप कहते हैं। गड़बड़ होती है ना परिणाम में, चैन नहीं पड़ता, गड़बड़ हो जा करती है। ये जो विक्षेप है, आकुलता है, ज्ञानी पुरुष की अत्यंत भक्ति इसका मास्टर की है। ये तो एक ऐसी मास्टर की कि बहुत से दोषों को मिटा देगी। ये सुगम और श्रेष्ठ साधन है, इसलिए कृपालु देव ने इसकी स्थापना जगह जगह पे अपने वचनों में कही है, करी है। तो इससे विक्षेप मिट जाएगा। कल साध्या में लेना होगा, कल के साथ शाम के उसमें भगवान मुक्ति आप में कृपण मैंने लोभी नहीं है,
बहुतों को मुक्ति दिया, लेकिन भक्ति क्यों नहीं देता है? जिसको भक्ति देगा उसको मुक्ति की जरूरत नहीं है। ये मुक्ति से भी कोई बढ़िया चीज है ऐसा कहता है, लेकिन किसको आती है? जो कोई नसीबदार होता है उसको आती है, जो भाग्यवंत होता है उसको आती है, बाकी नहीं आती। ये बात यहाँ तक।